सुबह मंगलवार का दिन था, राधिका की छुट्टी थी। रोज की तरह उसने सुबह उठकर खाना बनाया। रोज की तरह अर्पिता हड़बड़ी में नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गई। तब तक राधिका ने उसका लंच पैक करके उसके बैग में रख दिया था। उसके बाद राधिका ने आशुतोष जी को नाश्ता करवाकर उनकी दवाई खिलाई, फिर उन्हें आराम करने को कहकर खुद पूजा की थाल लेकर घर से निकल गई। मंदिर में प्रवेश करते हुए उसने झुककर चौखट को स्पर्श किया। उसी समय लोगों की भीड़ में एक और हाथ ने चौखट को स्पर्श किया और दोनों के कदम एक साथ मंदिर परिसर में प्रवेश किए। बीच में बड़ा खुला मंदिर प्रांगण था, जिसके दोनों ओर एक दूसरे से जुड़े कतार में छोटे छोटे मंदिर बने थे, जिनमें अलग अलग भगवान स्थापित थे। दोनों ने एक साथ मंदिर में प्रवेश किया, पर अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ गए। भगवान के दर्शन और पूजा पाठ के बाद उनके कदम एक बार फिर बजरंगबली के मंदिर में, जो बीच में पड़ता था, एक साथ पहुंचे। एक दूसरे की उपस्थिति से अनजान दोनों पूजा करने लगे। राधिका ने बजरंगबली के आगे हाथ जोड़े, प्रार्थना की और जैसे ही जाने को पलटी, पीछे खड़े शख्स के चेहरे पर उसकी नजर पड़ी। आगे बढ़ते कदम हवा में ही ठहर गए। चेहरे पर हैरत के भाव उभर आए, आंखें अविश्वास से फैल गई, सीने में दिल जोरों से धड़का और राधिका की कायनात जैसे उस चेहरे पर आकर ठहर गई। ठीक उसी पल उस शख्स ने अपनी आंखें खोली और निगाहें राधिका की बड़ी बड़ी सुरमई आंखों से टकरा गईं। उसके लब फड़फड़ाए और धीमी सी आवाज बाहर आई, राधिका। ये माधव था, जिसकी हालत राधिका से कुछ अलग नहीं थी। राधिका को अचानक अपने सामने देखकर उसकी आंखें भी हैरत से फटी की फटी रह गई थीं। जिन दो लोगों ने दोबारा कभी न मिलने का निश्चय किया था, वे आज ईश्वर के सामने एक दूसरे के सामने खड़े थे। कैसा अजीब इत्तेफाक था कि जितनी शिद्दत से वे एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे थे, उतनी ही शिद्दत से उनकी किस्मत शायद उन्हें मिलवाना चाह रही थी। हर मोड़ पर वे एक दूसरे से टकरा रहे थे, नसीब उन्हें बार बार एक दूसरे के पास ला रहा था। राधिका के कानों में माधव की धीमी सी आवाज़ पड़ी और वो सदमे की स्थिति से होश में लौटी। उसने अपनी घनी पलकों को फड़फड़ाया और नज़रें चुरा ली। जी, आप यहाँ? मतलब मैं हर मंगलवार को इस वक्त मंदिर आता हूँ, पर मैंने पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे अचानक यहाँ आपसे मुलाकात हो जाएगी। कुछ हैरत और कुछ संकोच भी था। उनके दरमियान अजीब सा वातावरण बन गया था। माधव ने बात की शुरुआत की। राधिका भी अब तक खुद को संभाल चुकी थी। उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जी वो सुबह स्कूल जाना होता है, वक्त नहीं मिल पाता तो शाम को आती हूँ, पर आज स्कूल की छुट्टी थी तो सुबह आ गई। मुझे भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे यहाँ इत्तेफाक से आपसे मुलाकात हो जाएगी। कभी न मिलने का निश्चय किया था और अब जब एक दूसरे के सामने खड़े थे तो क्या कहें और क्या नहीं, ये समझ नहीं पा रहे थे। बीते दिनों की बातों ने उनके दरमियान खिंचाव पैदा कर दिया था। दोनों ही एक दूसरे से बात करने में झिझक रहे थे। राधिका, यहाँ से बाहर चलें, कुछ बात करनी है मुझे आपसे। माधव के शब्द राधिका के कानों से टकराए और बेचैनी से यहाँ वहाँ भटकती निगाहें उसके चेहरे पर आ ठहरी। उन बड़ी बड़ी आंखों में कुछ सवाल थे, जिन्हें समझते हुए माधव ने आगे कहा, भीड़ है यहाँ, बाहर चलें। राधिका ने सिर हिलाया और दोनों मंदिर प्रांगण से बाहर आ गए। कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? राधिका, वैसे तो हमारा कोई रिश्ता नहीं, पर पास्ट में मेरे वजह से आपको जितनी भी परेशानी, असहजता और तकलीफ हुई, उसके लिए मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। मेरा इंटेंशन कभी भी आपकी परेशानियों को बढ़ाना, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आपके दिल को दुखाना या आपकी ज़िंदगी में दखल देने का नहीं था। हमारा रिश्ता जिस भी वजह से नहीं हो सका, इसका मुझे अफसोस है, जो हमेशा रहेगा, पर उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैंने आपको रिजेक्ट नहीं किया था, उल्टा आप मेरी पहली पसंद थी और मुझे आप जैसी हमसफ़र की ही तलाश थी। खैर, जो होना था सो हो गया। मैं बस चाहता हूँ कि आप पुरानी बुरी बातों को भूल जाएं और मुझे माफ़ कर दें। माधव की बातें सुनकर राधिका के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभर आए। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। उस दिन भावनाओं में बहकर मैंने बेवजह ही आपको इतना सुना दिया, इतना रूड बिहेव किया आपके साथ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारा रिश्ता चाहे जिस भी वजह से ना हुआ हो, पर मेरी ज़िंदगी के दुखों के जिम्मेदार आप नहीं हैं, मेरी खुद की किस्मत है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने मन में मुझे लेकर कोई नाराज़गी नहीं रखेंगे। जो भी हुआ उसे भुला देंगे, मुझे माफ़ करके इस बात को यहीं ख़त्म कर देंगे। माधव ने गौर किया कि राधिका उससे नज़रें मिलाने से बच रही थी। माधव कुछ पल गौर से उसके चेहरे को तकता रहा, फिर गंभीरता से सवाल किया, आप बात खत्म करना चाह रही हैं या हमारा रिश्ता? हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। शादी भले ही होने वाली थी हमारी, पर हुई नहीं। अब आपके और मेरे रास्ते जुदा हैं। आप अपनी वाइफ और परिवार के साथ खुश हैं और मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ, और हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि एक दूसरे की ज़िंदगियों से दूर रहें। इसलिए अगर दोबारा कभी इत्तेफाक से हमारी मुलाकात हो भी जाए तो निगाहें फेर लीजिएगा मुझ पर से, एक अजनबी समझकर नज़रअंदाज कर दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है मुझे। राधिका ने सपाट चेहरे के साथ दृढ़ता से अपनी बात रखी और वहाँ से चली गई। पीछे खड़ा माधव बस उसे देखता ही रह गया। निश्चय तो उसने भी यही किया था, पर अब जब राधिका ने ये बात कही तो जाने क्यों दिल में एक टीस सी उठी, चुभन का एहसास होने लगा। उसे खुद को दूर जाते देखकर जाने क्यों धड़कनें व्याकुल हो उठी और निगाहें बगावत पर उतर आईं। आप पास्ट है मेरा, और पास्ट का पास्ट में ही रहना ठीक है। अगर अतीत वर्तमान से जुड़ जाए तो उसका असर भविष्य पर पड़ता है, और साथ में हमारा कोई भविष्य नहीं। और इस बार मैं अपने दिल को कोई छूटी उम्मीद नहीं देना चाहती। आपका और मेरा साथ ना तब मुमकिन था ना आज, इसलिए बेहतरी इसी में है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। जाती हुई राधिका ने मन ही मन कहा। दिमाग में फैसला कर लिया था, पर दिल कहाँ किसी की सुनता था। वो कल भी मनमौजी था, आज भी मनमौजी था। जोरों से धड़कते हुए उसने इस फैसले का विरोध भी किया, आंखें भी पसीजी, पर राधिका ने उन आंसुओं को अपनी आंखों से निकाल फेंका और दिल को फटकार कर चुप करवा दिया। शाम का वक्त था। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी राधिका अपने बालों को समेट कर जुड़े में बांध रही थी, जब अर्पिता गुनगुनाते हुए वहां पहुंची। दीदी, कहीं जा रही हैं आप? अर्पिता को तैयार होते देखकर अर्पिता ने हैरानगी से सवाल किया। राधिका ने जूड़ा स्टिक बालों में घुसाया और उसकी ओर पलटते हुए मुस्कुरा दी। हाँ, बताया था ना तुम्हें, आहाना ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। मैंने तो बहुत मना किया पर वो मानी ही नहीं, और दोस्ती का वास्ता देने लगी तो बस वहीं जा रही हूँ, पर जल्दी ही लौट आऊंगी। तब तक तुम पापा का ध्यान रखना। ओके, मैं पापा की बॉडीगार्ड बनकर उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप उनकी बिल्कुल फिक्र मत करना, और जल्दी आने की भी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी बड़ी मुश्किल से तो काम के अलावा आपके कदम इस घर के बाहर निकलते हैं, तो आराम से जाइए और अच्छे से एंजॉय कीजिए। अर्पिता ने सौम्य सी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए जवाब दिया। राधिका के बाहर जाने की बात सुनकर वो उससे कहीं ज्यादा खुश और एक्साइटेड नजर आ रही थी। पल भर ठहरते हुए उसने आगे कहना शुरू किया। वैसे दीदी, आहाना दीदी हैं बहुत अच्छी, इतनी प्यारी और स्वीट है। मैं तो उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपसे दोस्ती कर ली, और अब आपको डिनर पर भी इनवाइट किया है। इसी बहाने आप कहीं बाहर तो जा रही हैं, वरना आपका बस चले तो खुद को इस चार दीवारी के अंदर कैद कर लें और बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही रिश्ते नाते खत्म कर दें। अर्पिता ने आखिर में मुंह टेढ़ा करते हुए शिकायती निगाहों से उसे देखा, और बदले में राधिका मुस्कुरा दी। तुम्हें पता है उसकी एक बहन भी है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी शैतान।
ये सुनते ही पल भर में अर्पिता की सारी नाराजगी खत्म हो गई। उसने उत्सुकता भरी निगाहों से उसे देखा और खुशी से चहकते हुए बोली, अच्छा, फिर तो कभी मुझे मिलवाइएगा उनकी बहन से, हमारी खूब पटेगी जैसे आप दोनों की खूब पटती है। वैसे दीदी, ये कितना हसीन इत्तेफाक है, आप और अहाना दीदी एक जैसी हैं, स्वीट, इनोसेंट, समझदार, सबको साथ लेकर चलने वाली, रिश्तों को दिल से निभाने वाली, और मैं और उनकी बहन एक जैसी हैं, शैतान। वैसे देखा जाए तो भगवान ने हमारे जैसी छोटी बहन देकर आप दोनों पर बड़ा एहसान किया है। हमारी वजह से ही आप दोनों की बोरिंग सी लाइफ में एंटरटेनमेंट का तड़का लगा है। हम हैं तो आप दोनों की लाइफ में थ्रिल है, एक्साइटमेंट है, ह्यूमर है कि नहीं? खुद ही खुद अपनी तारीफ करके खुद को चने की झाड़ पर चढ़ाने में लगी थी वो, और खुद पर खूब इतरा भी रही थी। बिल्कुल देवी जी, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं इसके लिए दिल से भगवान की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आप जैसी छोटी बहन दी, राधिका ने नाटकीय अंदाज में कहा, और अर्पिता के मुस्कुराते लब सिमट गए। उसने आंखों को सिकोड़ा और गालों को नाराजगी से फुलाते हुए उसे घूरने लगी। दीदी, आप मजाक उड़ा रही हैं मेरा, राधिका ने तुरंत ही चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए इनकार में सिर हिला दिया। जी नहीं, मैं तो बहुत सीरियस हूँ, तुम तो मेरी लाइफलाइन हो, है कि नहीं? राधिका ने भौं उछाली और अर्पिता ने झट से हामी भर दी। हाँ, वो तो मैं हूँ, और आप मेरे लाइफ सेवियर, मेरी रोल मॉडल, मेरी सुपर वूमन। बस बस, इतनी भी तारीफ मत करो, कहीं चने की झाड़ पर ही ना चढ़ जाऊं मैं, राधिका ने उसे टोका, हालांकि उसकी बातें सुनकर वो मुस्कुराए बिना न रह सकी थी। जाने अर्पिता के मन में उसकी मुस्कान देखते हुए क्या आया कि उसके मुस्कुराते लब सिमट गए और चेहरे पर संजीदगी के भाव उभर आए। दीदी, आपको पता है आप पहले से बहुत बदल गई हैं, जिम्मेदारियां तो आप पर पहले भी थीं, पर तब आप जिंदगी को खुलकर जीती थीं, हंसती मुस्कुराती रहती थीं, दिल से खुश होती थीं, हमारे साथ हंसी मजाक और खूब मौज मस्ती किया करती थीं। पर अब आप मुस्कुराती भी हैं तो आपकी आंखों में अजीब सा सूनापन और दर्द छलकता है। अब आपको देखती हूँ तो लगता है जैसे जिम्मेदारियों के बीच मेरी वो बेफिक्र दीदी कहीं खो गई है। क्या आप पहले जैसी नहीं हो सकती? राधिका के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजरा। उसके सांवले मुखड़े पर कुछ अजीब से भाव उभरे, जिन्हें छुपाते हुए वो फीका सा मुस्कुरा दी। मुझे पता ही नहीं कि मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ। मुझे तो खुद में कोई अंतर नहीं नजर आता, सिवाय इसके कि अब पहले से ज्यादा बुरी दिखने लगी हूँ, है ना? किसने ये बकवास की मेरी दीदी के बारे में? मेरी दीदी बहुत सुंदर है, बस उनकी सुंदरता देख सके न कल के अंधे लोगों के पास वो आंखें ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि हीरे को सिर्फ जौहरी की अनुभवी आंखें ही पहचान पाती हैं, वरना मूर्ख लोग तो उसे कोयले का टुकड़ा समझकर फेंक देते हैं। अर्पिता ने नाराजगी जताते हुए उसकी बात का विरोध किया और आकर उसके सीने से लिपट गई। मेरी दीदी बहुत अच्छी है, उनके जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। क्या बात है, कहाँ से सीख रही हो ये सब? राधिका ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए मजाकिया लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर अर्पिता सर उठाकर उसे देखने लगी। दीदी, आप किसी से कम नहीं हैं, इसलिए खुद को कम मत आंका कीजिए। खूबसूरती की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, हर इंसान खुद में खास और खूबसूरत होता है और मेरी दीदी बहुत खूबसूरत है। अर्पिता की सुई अब भी उसी बात पर अटकी थी और अब की बार तो वो काफी गंभीर लग रही थी। राधिका ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अच्छा अच्छा ठीक है, अब बस भी करो, देर हो रही है मुझे जाने में। अर्पिता ने उसके गाल को चूम लिया और छट से उससे दूर हट गई। राधिका ने मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ फेरा और अपने पर्स लेकर एक बार फिर उसे समझाने के बाद कमरे से बाहर निकल गई।